नमस्कार भारत, तारीख 21 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में एक्शन, लापरवाही के आरोप में GMDRM समेत 8 पर कार्रवाई।
8 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, 3 अधिकारियों को हमने छुट्टी पे भेजा है, 1 अधिकारी का ट्रांसफर किया है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है।
साफ सफाई और गुणवत्ता के पैमाने पर कहां खड़ी है भारतीय रेल, सुनवाएंगे खास रिपोर्ट।
पेट्रोल तो बहुत पैथेटिक है सर, बहुत पैथेटिक है, 99% केसेस जो होते हैं यूज किया वही देते हैं।
बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 250 के पार, चंपारण के एक गांव में सड़क पर रहने को मजबूर हैं 400 परिवार।
पानी गिरा गया घर में, हम लोग गिरा गया, न खाने का न पानी के, पहुर कर बाल बच्चा कर निकाले हैं।
होगी पाकिस्तान डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने को लेकर रेलवे ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, दिल्ली के DRM के अलावा रेलवे बोर्ड के सदस्य इंजीनियरिंग को भी छुट्टी पर भेजा गया है। इस हादसे के कारणों की जांच चल रही है। शनिवार को इस ट्रेन के 14 डब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। अमरीकी सेना ने बताया है कि सिंगापुर के पास समुद्र में अमरीकी नौसैनिक जहाज एक वाणिज्यिक पोत से टकरा गया है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन मैकेन की टक्कर लाइबेरिया के एक जहाज से हुई थी। बताया जा रहा है कि अमरीकी जहाज को इस टक्कर से नुकसान हुआ है। अमरीकी नौसेना ने बयान दिया है कि अभी भी राहत और बचाव कार्य शुरू है। गुरुवार को अमरीकी नौसेना ने USS विजगार्ड की एक अन्य जहाज के साथ हुई टक्कर के सिलसिले में इसी जहाज के कमांडर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की थी। माफ कीजिएगा, इससे पहले खबर में कहा गया था कि कलिंग उत्कल एक्सप्रेस रेल हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी। स्पेन की पुलिस के मुताबिक इस हफ्ते 2 चरमपंथी हमले करने वाले चरमपंथी सेल ने 120 गैस सिलेंडर जमा किए थे और चरमपंथी इनका इस्तेमाल वैन से हमले में करना चाहते थे। ये सिलेंडर अलकनार शहर में एक मकान से मिले हैं। माना जा रहा है कि चरमपंथी सेल इस मकान का इस्तेमाल कर रहा था और बुधवार रात को इस मकान में धमाका हो गया था। पुलिस अभी भी बार्सिलोना के लास रम्ब्लास में लोगों को वैन से कुचलने वाले ड्राइवर की तलाश कर रही है। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी। बार्सिलोना में कैटलोनिया की पुलिस के प्रमुख जोसेप लुइस ट्रापेरो ने बताया कि संदिग्ध के स्पेन की सीमा पार करने की भी जांच हो रही है। हम सीमा की सुरक्षा की निगरानी कर रहे बल की भी जांच में मदद कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इसकी संभावना है कि संदिग्ध ने सीमा पार कर ली हो। सभी गाड़ियों और लोगों की जांच की जा रही है। फिलहाल हमारे पास इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये थे जोसेफ लुइस ट्रापेरो के शब्द। इस बीच उत्तर कोरिया की तरफ से कई बार अपील करने के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सालाना सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी द्वीप गुआम पर मिसाइल दागने की धमकी दी थी, लेकिन पिछले हफ्ते उसने अपने रवैये में कुछ नरमी लाई थी। लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास शुरू होने के बाद उत्तर कोरिया ने इसे आग में घी डालने वाली कार्रवाई बताया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनकी विदेश नीति में सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिका को पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हुए परमाणु समझौते को तहस नहस करने से रोकना है। पिछले हफ्ते हसन रूहानी ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर और प्रतिबंध ला देगा तो ईरान इस परमाणु समझौते से अलग होने के लिए तैयार है, लेकिन कल संसद में हसन रूहानी ने कहा कि ईरान दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा।
وزیر خارجه ما در این دوره بزرگترین وظیفه‌اش
हमारे विदेश मंत्री की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का समर्थन करे और अमेरिका और अन्य दुश्मनों को सफल न होने दे। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का समर्थन करना यानी ईरान के दुश्मनों जैसे कि अमेरिका, इसराइल और हमारे क्षेत्र के अन्य छोटे देशों का सामना करना। ये थे हसन रूहानी के शब्द। BBC समाचार।
बी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। कभी आसमान से पानी बरसने का इंतजार और जब बरसात हो तो बाढ़ से निजात पाने का जतन, बरसों से यही हो रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बड़ी आबादी फिलहाल बाढ़ के भंवर से बाहर आने की राह तलाश रही है। नमस्कार भारत में हम बिहार और असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की बात करेंगे। दूसरी खबरों का भी जिक्र होगा, लेकिन शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर के करीब हुए रेल हादसे को लेकर हुई कार्रवाई से। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के अगले दिन यानी कल दिन में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जानकारी दी कि उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कहा है कि वो प्राथमिक सबूतों के आधार पर दिन खत्म होने तक जवाबदेही तय करें। इस बात की चर्चा थी, कार्रवाई के लिए सवाल उठाए जा रहे थे और देर शाम तक 8 अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर भी आ गई। पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथी आदर्श राठौर ने रेलवे के प्रवक्ता एके सक्सेना से बात की।
खतौली में हुए दुखद हादसे में जो प्रथम दृष्टया थोड़े एम्प्लॉइज के निग्लिजेंस की बात आई थी, बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स हमने जो है हमारे 8 अधिकारियों पे कार्रवाई की है। 3 अधिकारियों को हमने छुट्टी पे भेजा है फोर्स लीव पर, 1 अधिकारी का ट्रांसफर किया है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जो 3 अधिकारी है वो वरिष्ठ स्केल के अधिकारी है, सीनियर अधिकारी है। 1 मेंबर इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड है, 1 जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे है और 1 डिविजनल रेलवे मैनेजर दिल्ली डिवीजन है। इसके साथ जिनका ट्रांसफर किया गया है वो चीफ ट्रैक इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे है। जिन 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है वो दिल्ली डिवीजन के हैं, 1 सीनियर डिविजनल इंजीनियर दिल्ली डिवीजन, 2 असिस्टेंट इंजीनियर मेरठ, 3 सीनियर सेक्शन इंजीनियर मुजफ्फरनगर और 4 हैं जूनियर इंजीनियर खतौली। तो ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए टॉप टू बॉटम जो है ये एक्शन लिया गया।
अनिल, हादसे की वजह क्या निकल कर आई है, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ चूक हुई?
देखिए, पूरा करेक्ट पिक्चर तो प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही निकल के आएगा, लेकिन एक होता है ना प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं, कुछ निग्लिजेंस रिपेयर को लेकर, ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर थोड़ी सी नजर आई है, पेंडिंग डिटेल इंक्वायरी, यही पिक्चर सामने है। और उसके आधार पर जो है एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि जो लैक्सिटी है या निग्लिजेंस है उसको किसी भी हालत में जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
शनिवार को कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी और इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जानकारी दे रहे थे एके सक्सेना। ये ट्रेन पटरी से उतरी और कई जिंदगियां भी बेपटरी हो गईं, लेकिन अब स्थिति धीमे धीमे बदल रही है। बदले हालात का जायजा लिया बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने, जो कि मौजूद थे मुजफ्फरनगर में। उन्होंने जो कुछ देखा उसे बयां कर रहे हैं, सुनिए।
जैसे जैसे अस्पतालों में घायलों की हालत सुधर रही है तो मानसिक स्तर पर जो एक घबराहट थी, जो लोगों के मन में उनके कदमों में जो बेचैनी थी, वो अब धीरे धीरे दूर हो रही है। तो अस्पताल में अब परिजन भी थोड़ी थोड़ी बातों पर मुस्कुराते हुए मुझे दिखे। मैं बहुत सारे घायलों से मिला, घायलों में मैंने मनोज से मुलाकात की, उनके पैर में फ्रैक्चर है, वो शांति कुंज हरिद्वार जा रहे थे। उन्होंने बताया
5:30 बजे के बाद अचानक आवाज आया सर 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 सर, तो वहाँ बुजुर्ग लोग थे, बचाओ बचाओ बोलना शुरू कर दिए। तो मैं ये लेटा ही हुआ था तो बचाओ बचाओ बोलते बोलते ना स्पीड था ट्रेन, तो पटरी से नीचे उतर गए, पलटी हो गए, पैर आगे जाके जो खिड़की है ना उसमें मेरा पैर जाके फंस गया, तो उतने ही समय मेरा पैर टूट गया।
इस वक्त जो घायल अस्पताल में हैं उनके पास अपनी कहानियां हैं बहुत सारी बताने के लिए। मैंने शारिक से बात की, उन्होंने बताया कि दोस्त के साथ इस ट्रेन पे जाना था लेकिन दोस्त का जाना एन मौके पर कैंसिल हो गया और वही दोस्त अस्पताल में उनकी तीमारदारी कर रहा है।
मुझे इनके साथ ही आना था बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, मेरे इनके साथ नहीं आ पाया, मैं यहाँ लगा बस से आया, तो मेरे को पता लगा तो फिर मैंने उनको फ़ोन मिलाना शुरू किया, उनका फ़ोन नहीं लगा, तब पता लगा धीरे धीरे न्यूज़ इधर उधर से आने की कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया है।
अस्पताल में ये हालत है कि अभी एक जो बड़ा वार्ड था जो उस दिन पूरा भरा हुआ था और एक्स्ट्रा बेड वहाँ लगे हुए थे, 5-6 बेड उनमें अब खाली थे, तो उन लोगों को छुट्टी दे दी गई थी। सीएमओ साहब ने भी बताया,
मेरे यहाँ कुल 65 पेशेंट्स आए थे, उनमें से 4 पेशेंट मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिए गए थे, बाकी पेशेंट ठीक होकर चले गए थे।
जो अधिकारियों के वर्जन का इंतजार था, आज वो मुझे बहुत खुल करके अधिकारी बात करते हुए नहीं मिले। जिनके बयान का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, खेतौली के स्टेशन मास्टर, मैं उनसे बात करने गया और उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताने से मना कर दिया।
जानकारी दे रहे थे कुलदीप मिश्र। रेलवे में सवाल सिर्फ सुरक्षा को लेकर नहीं है। हाल में संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में भारतीय रेल में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी और चादरों और कंबलों की स्थिति पर भी गंभीर टिप्पणी की गई है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने हकीकत की परख के लिए ट्रेन से लंबी यात्रा की। सुनिए उनकी खास सीरीज की ये पहली रिपोर्ट।
भारत में रहने वालों के लिए रेल सिर्फ दूरियां तय करने का साधन नहीं, बल्कि ये यहाँ के लोगों की जीवन रेखा भी है। रेल सब कुछ जोड़ती है, कस्बे, शहर और संस्कृति। हजारों लोग हर रोज रेल से यात्रा करते हैं, हजारों के रोजगार इस पर निर्भर हैं। रेलवे कभी रुकती नहीं, मगर पिछले महीने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए, जिससे यात्रा करने वालों की परेशानियां उजागर हुई। मुझे पता था कि मेरा सफर बड़ा लंबा भी है और मुश्किल भी। क्योंकि ट्रेन पहले से ही लंबा सफर तय कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, पूरे कंपार्टमेंट में गंदगी का अंबार पहले से ही था। दिल्ली से यात्रा शुरू करने वालों को उम्मीद थी कि आगे का सफर शुरू होने से पहले ही बोगी की सफाई हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग ट्रेन में सफाई कर्मियों की तलाश करते रहे। सिग्नल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया।
टू टायर लाग है नहीं।
सेकंड टायर की स्थिति
जो लेटरिन बाथरूम के लिए है ना, बहुत ही ज्यादा वो रखा है।
इस बीच कोच अटेंडेंट ने दिल्ली में सफर पूरा कर उतरे लोगों की चादरें तय करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि वो इन इस्तेमाल की हुई चादरों को तय करके क्यों रख रहे हैं।
ये तो पहले पैकेट में आया करता था।
धुला हुआ है।
अधिकारियों के अनुसार रेलवे हर वातानुकूलित श्रेणी के टिकट पर प्रति यात्री 20 रुपए अतिरिक्त किराया वसूलती है। इस अतिरिक्त शुल्क के जरिए रेलवे कंबल और चादरों की धुलाई की व्यवस्था करती है। जहां चादरें और तकिए के खोल हमेशा हर यात्री को धुले दिए जाने का नियम है, कंबल की धुलाई का प्रावधान हर 2 महीने के बाद है। मगर कई ट्रेनों में ये कंबल 6 महीनों तक नहीं धोए जाते हैं, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है।
ये जो बेडशीट है, ये यूज बेडशीट आप दोबारा दे रहे हैं
ना?
तो ये आप तय करके रख रहे हैं, फिर जो आएगा उसको आप ये वाली दे देंगे?
है रखने में से प्रॉब्लम होता है।
ये तो फेंक देना है ना इसको, तो धुलाई के लिए आपको दे देना है, दूसरे पैसे ऐसे धुलाई के लिए लेके जा रहे हैं आप।
सफर जारी रहा, एक स्टेशन के बाद दूसरा, लोग उतरते गए और नए यात्रियों की खेप चढ़ती रही। दरवाजे के पास सीट होने की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। सुबह हो गई और इस बीच ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती रही और चलती रही, मगर पानी का नामो निशान नहीं।
कि A1 के अटेंडेंट कौन है, तो जस्ट SA1 में बंदे सोए हुए हैं और मैंने कहा भाई देखो पानी भी यहाँ नहीं है, तो सर कहीं सोया होगा, मैं आसपास खोजा, मैं बोला कि कंप्लेन भी करने जा रहा हूँ, बोला ठीक है कंप्लेन कर लीजिए।
आने वाले समस्तीपुर स्टेशन पर टीटी साहब को भी पता चल गया कि मैंने रेल मंत्रालय के ट्विटर पर शिकायत की, तो उनके सुर भी बदल गए।
स्लीपर नहीं मिल रहा है तो पब्लिक को पसंद नहीं मिलेगा, इसका देख रहे हैं मतलब मोबाइल खेल रहा है और नाइट में यहाँ अंदर बैठ के ठंडा नहीं लगेगा। पाइप आपके प्रयास से पाइप बढ़ाया जाए, जागरूक नहीं है तो हम लोग बात नहीं सुनता।
टीटी श्याम चंद्र ठाकुर ने मुझे बताया कि ट्रेन में सफाई करने की जिम्मेदारी और बोगियों में पानी भरने की जिम्मेदारी भी ठेके पर दी गई है।
कोई अपना अपना काम नहीं करेगा, हम टीटी के लिए नहीं करेंगे, तुम सफाई गिरी नहीं करोगे, कोई गाड़ी का काम नहीं करेगा, कोई ड्राइवर का काम नहीं करेगा।
ट्रेन समस्तीपुर पहुंची तो यात्रियों ने गंदगी और पानी नहीं होने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
ट्रेन खुलने का समय आया, स्लीपर भेजता है,
खुलने का समय नहीं सर,
कितना देर खुलने में।
तभी सफाई कंपनी के सुपरवाइजर राजा कुमार सिंह भी प्रकट हुए।
पानी भरने के लिए आता है तो पाइप लगा देता है मगर पानी नहीं भराता है। पानी का प्रॉब्लम हम लोग का नहीं, ऐसे जाने का हम लोग का काम है सफाई करना, पानी रहेगा तभी करेंगे।
मेरी ही बोगी में सफर कर रहे पेशे से डॉक्टर विकास शाह ने मुझे बताया कि वो अक्सर इस ट्रेन से आते जाते हैं।
पेट्रोल तो बहुत पैथेटिक है सर, बहुत पैथेटिक है। 99% केसेस जो होते यूज किया वही देते हैं, और कोच जो भी है, कोच की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है बहुत पुराना है।
अनाधिकृत लोगों का चढ़ना उतरना भी परेशानी का सबब बना रहा, क्योंकि आपका सामान ऐसे में भला कैसे सुरक्षित रह सकता है। एसी में अनाधिकृत रूप से सफर करने वालों में पुलिस वाले और रेल कर्मचारियों की तादाद ही ज्यादा थी। सफर जारी रहा और परेशानियां भी बदस्तूर जारी रहीं। अगले दिन रात को ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंची। मैं तो उतर गया और ट्रेन डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो गई। मैं ये सोचता रहा कि आखिर जिस बेडशीट, तकिए और कंबल का इस्तेमाल मैं 2 दिनों तक करता रहा, वो पता नहीं किस यात्री की किस्मत में आया होगा। सलमान रावी, BBC न्यू जलपाईगुड़ी।
पचहत्तर वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब बात बाढ़ की। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 253 हो गई है। सबसे अधिक 57 मौत अररिया जिले में हुई है। इसके अलावा चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया जैसे जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे सहयोगी रवि प्रकाश अभी चंपारण के मोतिहारी में हैं। क्या है इस जिले का हाल, सुनिए उनकी इस रिपोर्ट में।
मैं मोतिहारी के छतौनी चौक से ढाका की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहा था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर सड़क पर पानी की धार दिखी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पानी की ऊंचाई और बढ़ती चली गई। अंततः यह सड़क गायब हो गई। हर तरफ पानी ही पानी था, सैलाब का विचलित कर देने वाला नज़ारा। लोगों के घर पानी में डूबे थे और कुछ कमर भर पानी को हेलकर पैदल चल रहे थे, तो कुछ ने ट्रैक्टर का सहारा लिया। पानी में 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं भड़ौलिया गाँव में था। लोगों ने भड़ौलिया पुल और इससे जुड़ी सड़क पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। 400 घरों वाले इस गांव के हजारों लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है और वे घरों को छोड़कर सड़क पर रह रहे हैं। मेरी मुलाकात अंति देवी से होती है। वे कहती हैं कि उन्हें देखने कोई नहीं आया। अंति देवी ने BBC से कहा,
इतनी के लिए का साधन है, हमें पानी गिरा गया घर में, हम लोग गिरा गया ना खाने का ना पानी के, पहुर कर बाल बच्चा कर निकाले हैं, मल्दी के साथ में देवाल गिरा गया है, मैं पानी नहीं निकलता है, तो जाकर चौकी लगा कर ऊपर बाल बच्चा के हम रख के आए।
यहाँ लोगों के साथ जानवरों का भी बसेरा है। कोई पानी में भीग चुके अपने गेहूं को सुखाने के जतन में है, तो किसी को खाने की चिंता सता रही है। कुछ वैसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कल कुछ भी नहीं खाया। प्रशासन और सत्ता के नुमाइंदे यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। इस बीच पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 48 हो चुकी है। यह सरकारी आंकड़ा है। बाढ़ के पानी में कितने जानवर मरे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लोग बता रहे हैं कि लखौड़ा साइड में और भी ज़्यादा पानी है और वह धारा इधर ही की तरफ आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मोतिहारी और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। यह इत्तेफाकी है कि उनके हवाई सर्वेक्षण के वक्त बाढ़ में डूबे लोगों को धरातल पर राहत मुहैया कराने वाला सरकारी अमला नदारद था। रवि प्रकाश, BBC के लिए भड़ौलिया, मोतिहारी में।
असम के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ताजा स्थिति की जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा से बात की।
देखिए, अभी भी जो हालात हैं असम के कई जिलों में बहुत ही अभी भी नाजुक बने हुए हैं। कई गांव अब भी पानी के नीचे हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि धुबरी, बरपेटा, ग्वालपाड़ा इन जिलों में अभी भी सैकड़ों गाँव यानी और मोरीगांव में 293 गाँव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। रोजाना मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में देखिए 5 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय जल आयोग की जो रिपोर्ट है, अभी भी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये लगातार शिकायत आ रही है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अब भी प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा ऐसे 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 जगहों पर ज्यादा स्थिति खराब है, खास करके मोरीगांव। मोरीगांव में मैं आज मोरीगांव के ही दौरे पर हूँ और मोरीगांव में हालात बहुत बदतर है।
राहत कार्य की क्या स्थिति है, अभी भी कई गांव पानी में डूबे हुए हैं?
देखिए, जो जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है, कई स्कूलों में लोगों को रखा गया है, राहत शिविर खोले गए हैं, उनमें से कुछ में से शिकायत ये है कि भाई राहत प्रशासन से टाइम पर नहीं पहुंच रहा है। और बताया जा रहा है कि कम से कम 5,000 से ज्यादा स्कूलें पूरी तरह बंद पड़ी हैं।
जानकारी दे रहे थे दिलीप कुमार शर्मा। और अब वक्त ये जानने का है कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। हरिता जी, क्या कुछ खबरें हैं आज की?
आज के अखबारों की बात करें, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसकी हेडलाइन है कि BRO यानी कि जो सड़क सीमा सड़क संगठन है, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसी के मद्देनज़र ये खबर आई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास सैनिकों और हथियारों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में चुनौतियों का सामना आजकल केंद्र सरकार कर रही है और इसी के चलते सीमा सड़क संगठन के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया जाने का फैसला किया गया है, ताकि जो अधूरी निर्माण परियोजनाएं हैं, जैसे कि जो सामरिक महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उनको पूरा किया जा सके। क्योंकि जो 73 सड़कें महत्वपूर्ण हैं, उनमें से सिर्फ 27 सड़कें जो हैं पिछले 15 साल में पूरी की जा सकी हैं।
73 में से केवल 27
जी। जबकि इसके विपरीत चीन जो है उसने रेल लाइनों, राजमार्गों, धातु शीर्ष सड़कों, वायु अड्डों, रडार, इस तरह की कई जो व्यापक नेटवर्क है उसका व्यापक निर्माण कर लिया है और वो काफ़ी आगे निकल चुका है चीन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। एक और खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है, इसके पहले पन्ने पर छपा है ये कि लोकसभा सांसद जो हैं तथागत सतपति और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच एक पत्र के आदान प्रदान को लेकर चर्चा शुरू हुई है। बीजू जनता दल के नेता तथागत सतपति ने ओडिया में जो है केंद्रीय मंत्री का जो हिंदी में लिखा पत्र था उसका जवाब उड़िया में दिया है और इसी तरह उन्होंने हिंदी थोपने की बहस को हवा दे दी है। अखबार लिखता है कि शुक्रवार को लोकसभा के सांसद ने केंद्रीय मंत्री के चिट्ठी को ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री जो है वो हिंदी को गैर हिंदी भाषी भारतीयों पर क्यों थोप रहे हैं,
यानी उन्हें थोपने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, उनका कहना है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये अन्य भाषाओं पर हमला है, तो एक हवा इसे दे दी गई है। जनसत्ता की खबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत के कई हिस्सों में डीमोनेटाइजेशन यानी कि जो नोटबंदी पिछले साल हुई थी उसने माओवादियों और जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को जो है उनकी कमर तोड़ दी है, उनकी फंडिंग के जो है लाले पड़ गए हैं। ये कल उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इसके अलावा एक और खबर सारे ही अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो है इंजीनियरिंग से जुड़ी एक परीक्षा की। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि अगले साल JEE की परीक्षा ऑनलाइन हो जाएगी, पूरी तरह से ऑनलाइन होगी ये प्रवेश परीक्षा। एडवांस परीक्षा के लिए जॉइंट एडमिशन बोर्ड ने ये फैसला किया है। एक और खबर दिल्ली हवाई अड्डे से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर ड्रोन से हड़कंप मच गया और करीब 2 घंटे तक परिचालन ठप रहा है।
बहुत शुक्रिया हरिता जी इस पूरी जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब वक्त है वस्तुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी का, जो अपने ही अंदाज में लव जिहाद की बात कर रहे हैं, आप भी जरा सुनिए।
केरल के शफीक जहां और हादिया उर्फ अखिला की शादी कहीं लव जिहाद तो नहीं? हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे इंतजार है किसी ऐसी शादी का जहां पे दुल्हन मुसलमान हो और दूल्हा हिंदू, और फिर कोई ये कहे कि ये भी लव जहाद है कि एक मुसलमान लड़की ने एक हिंदू लड़के को अपने चुंगल में फंसा के उसे आतंकवादी बनाने की कोशिश की। ये तो आप जानते ही हैं कि अरबी के शब्द जहाद का वही मतलब है जो हिंदी में संघर्ष का है। जहाद हो के संघर्ष, दोनों के मानने वाले कहते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की विजेता की कोशिश है। इस एतबार से तो हिंदू मुस्लिम झगड़े से अलग हर शादी ही लव जहाद है। पहले लव शादी करवाता है और फिर मियां बीवी के दरमियान जहाद शुरू हो जाता है। खान पान, रिश्तेदार, बच्चों का भविष्य, एक दूसरे पे शक, अक्सर बिना शक ही शक, गोया हर शादी की शुरुआत लव और दी एंड जहाद पे ही होता है और फिर जीवन भर अच्छाई या बुराई की जंग चलती रहती है। मगर इस बीचों बीच बच्चों की तादाद भी जाने क्यों बढ़ती जाती है। लव जहाद का इतिहास आज का थोड़ा है, इससे तो हर बालक बचपन में ही परिचित हो जाता है। जब दादी या नानी अम्मा कहानी सुनाती हैं कि एक था राजा, उसने सुना कि साथ वाली रियासत की राजकुमारी बहुत खूबसूरत है, उसने रिश्ता भेजा। राजकुमारी के बाप ने कमजात होने की वजह से रिश्ता स्वीकार नहीं किया। बस फिर क्या था, रिश्ता भेजने वाले राजा ने आओ देखा ना ताओ पड़ोसी रजवाड़े पे आक्रमण कर दिया और राजकुमारी को उठा के ले गया और ज़बरदस्ती सात फेरे ले लिए। और फिर हम पढ़ते हैं अकबर बादशाह की कहानी के, जिसने जोधाबाई से शादी की ताकि अपनी सल्तनत में आतंकवाद की आग भड़क जाए। मगर उस ज़माने के राजपूत सियाने थे, खून के घूंट पी के रह गए और यह हिसाब 500 वर्ष बाद उभरने वाले लव जहाद आंदोलन वालों पे चुकता करने के लिए छोड़ दिया। बात यह है कि ज़बरदस्ती की शादी भले किसी लड़की की सिंध में हो के हिंद में, वो ज़बरदस्ती की ही कहलाएगी, चाहे हिंदू करे के मुसलमान। जब ये बात एक बार तय हो गई तो फिर कानून के हिसाब से निमटिए। इसे सियासत का रोग काहे को बनाते हैं, और मुद्दे क्या ख़त्म हो गए? शादी भले प्यार की हो या मार की, नतीजा एक ही निकलता है, संघर्ष यानी जहाद। और लव शव तो कहीं शुरू में ही पतली गली से निकल लेता है, बस ऊपर वाले का नाम और बच्चे बाकी रह जाते हैं। और जो शादीशुदा कहते हैं कि उनके यहाँ ये सब नहीं होता, वो बड़े कमाल के लोग हैं। एक दो की तस्वीरें मिल जाएं तो मुझे भी दिखाइएगा, ताकि झूठ का चेहरा मैं भी तो देखूं।
जी, अगर आपके पास हो कोई तस्वीर तो भेजिए वसत साहब को, अगर ना भी हो तो अपनी राय जरूर हमें पाकिस्तान डायरी पर भेजिए। और अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, जान लेते हैं खेल की दुनिया की क्या है हलचल।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
धवन, अपॉर्चुनिटी टू फिनिश इट ऑफ, देयर यू गो, द विनिंग रन्स, इंडिया इज वन अप, इट्स इंडियाज़ बिगेस्ट विन्स इन टर्म्स ऑफ बॉल्स टू स्पेयर।
श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 3-0 से जीतने के बाद भारत ने कल 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भी 9 विकेट से जीत हासिल की। डांबोला में खेले गए इस मैच में भारत के सामने जीत के लिए 217 रनों का लक्ष्य था, जो उसने शिखर धवन के नाबाद 132 और कप्तान विराट कोहली के नाबाद 82 रनों की मदद से 28.5 ओवर में केवल एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 4 रन बनाकर रन आउट हुए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर श्रीलंकाई पारी 43.2 ओवर में ही केवल 216 रन पर सिमट गई। श्रीलंका के निरोशन डिकवेला ने 64, धनुष्का गुनातिलके ने 35, कुशल मेंडिस ने 36 और एंजेलो मैथ्यूज ने भी नाबाद 36 रन बनाए। 34 रन देकर 3 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल ने खोला कामयाबी का राज।
मैं पेस वेरी कर रहा हूं कि थोड़ा एक स्लो, थोड़ा बीच में तेज, तो उसमें मेरा फायदा हो रहा है।
और अब बात बैडमिंटन की। आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसमें आज ही पुरुष एकल वर्ग में भारत के के श्रीकांत का सामना रूस के सर्गेई सिरांत से होगा, जबकि महिला एकल वर्ग में भारत की तन्वी लाड इंग्लैंड की शोले बिर्च का सामना करेंगी। ऋतुपर्णा दास फिनलैंड की आयरी मिकेला का सामना करेंगी। मिश्रित युगल वर्ग में भारत के बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा और एक अन्य जोड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और के मनीषा भी अपना दावा पेश करेंगे। इतना ही नहीं, पुरुष युगल वर्ग में बी सुमित रेड्डी और मनु अत्री के अलावा महिला युगल वर्ग में संजना संतोष और आरती सारा सुनील की जोड़ी भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी पीवी सिंधु को 4थी और साइना नेहवाल को 12वीं वरीयता दी गई है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम के समापन के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने को लेकर रेलवे ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अमरीकी सेना ने बताया है कि सिंगापुर के पास समुद्र में अमरीकी नौसैनिक जहाज एक वाणिज्यिक पोत से टकरा गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का साझा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। गुस्साए उत्तर कोरिया ने कहा कि ये आग में घी डालने वाली कार्रवाई है। اسپین کی پولیس کے مطابق اس ہفتے دو چرمپنتی حملے کرنے والے چرمپنتی سیل نے 120 گیس سلنڈر جمع کیے تھے اور چرمپنتی ان کا استعمال وین سے حملہ کرنے میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بی بی سی سماچار۔
نمسکار بھارت میں آج اتنا ہی۔ اسٹوڈیو کی کمان تھی راجیش چوہان کے ہاتھ۔ فیس بک لائیو کو آپ تک پہنچایا بھومکا نے۔ آپ سے اگلی ملاقات شام 7:30 بجے دن بھر میں ہوگی۔ تب تک بدلتی خبروں کے لیے آپ کے ساتھ ہے bbchindi.com کا پنہ۔ واتسل رائے کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ دیجیے انومتی۔ نمسکار۔